शशि दीदी जी पधारे हैं। हम एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी हमारे यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं कंधों पे, लेकिन अवश्य जिम्मेवारियों के बीच से अपना अमूल्य समय निकालकर हम सबसे मिलने आए हैं, तो हम उनका पूरा पूरा लाभ लेंगे। दीदी की विशेषता है इजी और बिजी का बहुत सुंदर बैलेंस रखते हैं। तो आज हमें अपनी शुभकामनाओं से, शुभ प्रेरणाओं से भरपूर करेंगे और स्वागत टोली देकर मुख भी मीठा कराएंगे।
ओम शांति। मधुबन तपस्वी भूमि, प्यारे प्यारे बाबा की श्रेष्ठ चरित्र भूमि, हमारे विद्यालय के एडवांस पार्टी की दादियां, दीदियां और वरिष्ठ दादाओं की श्रेष्ठ चरित्र भूमि मधुबन में आप सबका बाप दादा मधुबन निवासी और सभी भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। तो जब हमें बताया गया कि दिल्ली, कानपुर और उससे संबंधित सेवा केंद्र के भाई बहनों की भट्टी यहाँ मधुबन में रखी है, तो मैं सोच रही थी दिल्ली इतना बड़ा, जिसको साकार बाबा भी बहुत याद करते हैं, हमारी ही राजधानी होगी। हमें उस दुनिया में उस स्थान पर जाना है, लेकिन आप सब यहाँ पर क्यों आए? जबकि दिल्ली में इतने बड़े बड़े सेंटर्स, इतने रिट्रीट सेंटर, सभी दादियों की पालना, गुलजार दादी ने क्या नहीं आपको भरपूर किया, ब्रिजमोहन भाई और सभी जो हैं आपको इतना भरपूर करते हैं। अभी तो ORC इतना बड़ा सुंदर रिट्रीट सेंटर बना है, जो कि रहने की अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, इतनी सुविधाएं हैं, इतनी प्राप्ति हैं, फिर भी मधुबन में क्यों भट्टी करने आए, वो बताओ हैं? क्यों आए भट्टी करने यहाँ? अरे यहाँ तो रहना साधारण, कैसे रहना, किस तरह से रहना, और जो आराम से रहने वाले दिल्ली में, वहाँ पर हर कमरे में AC मिलेगा, यहाँ तो किसी भी कमरे में AC नहीं है। कितने लोगों को इकट्ठा रहना पड़ता है, कहीं पंखा चलेगा, कहीं गर्मी होगी, लेकिन ड्रामा अनुसार प्रकृति भी आपका अच्छा ही स्वागत कर रही है। मौसम ठंडा हो गया है, नहीं तो कुछ समय पहले आप बहुत गर्मी थी, लेकिन बाबा के बच्चे बहुत अच्छे अनुभव कर रहे थे। तो आपको तो कहना चाहिए मधुबन अपना घर है, हम अपने घर में अपने ही बाप के पास अपने ही स्थान पर आए हैं, तो इसलिए अपने ही घर में अपने ही स्थान पर अपने ही बाबा के, और मेरे बाबा, आपका बाबा नहीं, मेरे बाबा हैं, आपका बाबा या मेरा बाबा, हमारा बाबा बोलो, हम सब के बाबा के घर में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है, स्वागत है। और जब कानपुर की बात करते हैं, तो कानपुर और से संबंधित और भी सेंटर्स हैं। तो कानपुर को तो हम बहुत समय से जानते हैं, जहाँ पर हमारे आदरणीय भ्राता लक्ष्मण जी और हमारी सुंदरी बहन और भी उससे पहले हमारी सीनियर दीदियाँ, मोहिनी बहन, ये सब कितना प्यार से आप सबको पाला है, और ड्रामा अनुसार उस स्थान का नाम ही कानपुर है। तो अभी आप देखिए कि कितनी खाने हैं वहाँ पर, बहुत सी खाने होंगी, खुशी की खान होगी, आनंद की खान होगी, ज्ञान की खान है, पता नहीं कितनी खाने आपको है, लेकिन वो सब छोटे छोटे खाने हैं ना, छोटे छोटे। बड़ी खान कहाँ मिलती है? वो है मधुबन में। सब खाने इस मधुबन में ही समाई हुई हैं। जितना इसका लाभ लेना चाहे उतना लाभ ले सकते हैं। पहले भी आगे हम भक्ति मार्ग में कहानी सुनते थे कि एक बार एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, उसको रास्ते में कोई ने बोला कि तुम जाओ थोड़ी दूरी पर एक खान मिलेगी आपको, फिर उसके आगे जाओगे एक और खान मिलेगी, उसके आगे जाओगे तो एक और खान मिलेगी। वो व्यक्ति गया, पहले उसको तांबे की खान मिल गई, फिर चांदी की खान मिल गई, फिर सोने की खान मिल गई, फिर थोड़ा सा डायवर्शन हुआ तो सारी खानों से जो कुछ उसने लिया था वो सब का सब उसके हाथ से चला गया, खाली हो गया। अब मधुबन जो सब प्रकार की माइंस खान से भरपूर हैं, तो भट्टी के अंदर भी अगर जरा सा भी बुद्धि में डायवर्शन हुआ तो बाबा से जो प्राप्ति हो रही है वो प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमें तो साकार बाबा के साथ रहने का बहुत बड़ा मौका भी मिला, काफी समय रहने का मौका मिला। साकार बाबा के टाइम पर जब बाबा हिस्ट्री हॉल में मुरली चलाते थे तो मुरली चलाते चलाते बाबा खड़े हो जाते थे, खड़े होकर के पूरे हिस्ट्री हॉल के अंदर चक्कर लगाते थे और बाबा को देखते थे सारी की सारी क्लास जैसे सूक्ष्म फरिश्ते बन करके जैसे सूक्ष्म वतन में पहुंच गए हैं। तो कभी कभी बाबा देखते थे कई बच्चे इतने मतवाले होते हैं, बाबा आए हैं दृष्टि दे रहे हैं, थोड़ा इधर देखेंगे, बाबा इसको देख रहे हैं मेरे को नहीं देख रहे, अरे बाबा आपको दृष्टि दे रहे हैं कहेंगे इसको देख रहे हैं मेरे को नहीं देख रहे, ये आगे क्यों बैठ गया, मैं पीछे क्यों बैठ गया, मैं साइड में क्यों बैठी, इधर क्यों नहीं बैठी। तो जब ये संकल्प हमारे अंदर आने लगते हैं तो बाबा से जो हमें वरदान मिलते हैं, बाबा से जो हमें खजाने मिलते हैं, वो खजाने मिलते हुए झोली भरते हुए भी धीरे धीरे संकल्पों से झोली में एक छेद होना शुरू हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो आप तो इतने लक्की हो, अनुभवी हो, ज्ञान रत्नों से भी भरपूर हो, इतना ज्ञान है आपके पास, इतना ज्ञान है जैसे प्रश्न पूछेंगे ना फटाफट जवाब दे देंगे, क्योंकि आपको शुरू से लेकर के ज्ञान सुनाने वाले और हमारी जो आशा बहन उषा बहन जितने भी सारी हैं, और बहनों के नाम तो मैं नहीं ले रही, सारी की सारी बहनें इतने अनुभवी हैं, आप सबको ज्ञान के अंदर इतना एक्सपर्ट कर देती हैं। तो ये बात का हमें इस भट्टी के अंदर विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात हम आपको बताएं कि कितने भी स्थानों पर आप भट्टी करेंगे वहाँ पर निराले अनुभव हैं, बहुत प्यारे अनुभव हैं, लेकिन यहाँ का जो अनुभव है वो है विशेष अनुभव, बाप दादा के साथ का अनुभव। आए हैं अभी देर से आए हैं, हर एक की यही कंप्लेंट रहती है, हम देर से क्यों आए, हमने बाबा को क्यों नहीं देखा, हमारा क्या कसूर था, ड्रामा में क्यों आए। लेकिन बाबा कहते कोई कसूर नहीं है, मैं बच्चों के साथ हूँ। बाबा ने कहा ना, मैं साथ हूँ, साथ ही चलेंगे, किसी को छोड़ करके नहीं जाएंगे, कोई कहे नहीं हमको नहीं जाना, बाबा कहते जबरदस्ती भी पकड़ के ले जाऊंगा, है ना। फिर बाबा ने एक और तरीका भी बता दिया है, बाबा के साथ चलना है तो क्या बनना है, एकदम अपने आप को प्योर करना है। बाबा कहते एकदम चुंबक जैसा बनना है, जहाँ बाबा वहाँ बच्चे, जैसे मधुमक्खी की रानी होती जहाँ जाती मधुमक्खी का झुंड उनके पीछे घूमता रहेगा, घूमता वो जहाँ रुकेगी पूरा झुंड फुड़ 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 करता रहता ना, चारों तरफ आवाज आती है। तो बाबा के बच्चों को तो आवाज नहीं करनी है, बाबा के बच्चों को क्या करना है, लाइट के, योग के प्योर वाइब्रेशन सारे विश्व के अंदर फैलाने हैं। तो एक तो पहली बात है कि हमें यहाँ रहते हुए बाबा के साथ का अनुभव होगा, फिर कभी भी ये कंप्लेंट नहीं करेंगे बाबा नहीं देखा है, बाबा हम देरी से क्यों आए। बाबा कहते ये सोच सोच करके क्या करते हैं, जो बाबा दे रहा है उसका पूरा लाभ नहीं लेते हैं। और दूसरी बात हम आपको बताएं, जिस मेडिटेशन हॉल में बैठ के आप भट्टी करेंगे, इस मेडिटेशन हॉल की विशेषता क्या है वो हम आपको बताएंगे। ये मेडिटेशन हॉल जो है साकार बाबा के टाइम पर पहाड़ी था, और ये बगीचा आप देख रहे हैं, बाबा ने अपने हाथ से बगीचा लगाया हुआ था। और बाबा रोज मुरली क्लास से पहले बगीचे में आते थे और पुष्पों को बगीचे को देखते थे, फूल तोड़ करके ले जाते थे क्लास में, कभी कोई फूल कभी कोई फूल। और फिर क्या था, बाबा ने अंगूर की बेल भी लगाई थी, जो मम्मा 24 जून को जब अव्यक्त हुई तब 24 जून को ही इस अंगूर की बेल में मोटे मोटे अंगूर इतना बड़ा, उसके अंदर एक या दो बीज होते थे। तो बाबा प्यारी माँ की याद में वो अंगूर सभी सेंटर्स पर भिजवाते थे। एक ग्रुप बनता था जो दिल्ली साइड यहाँ से शुरू करता, जयपुर अजमेर होते दिल्ली साइड, एक ग्रुप पंजाब साइड, एक बॉम्बे तरफ, एक साउथ इंडिया की तरफ जाते थे। तो वो अंगूर की बेल यहाँ इस पहाड़ी पर थी, बहुत बड़ी थी, थोड़े नहीं बहुत अंगूर आते थे, इतने इतने गुच्छा गुच्छा हमको मिलता था। अभी तो उतना नहीं, अभी तो एक एक दाना मिलता है, उस समय हम लोगों को गुच्छा गुच्छा मिलता था, जैसे ना बहुत बाबा छप्पड़ फाड़ के देता है ना, तो ऐसा ही हमारा अनुभव होता था। फिर जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा साकार बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त बाप दादा बाबा के कमरे में आते थे, दादियां होती थी थोड़े से होते थे, फिर अव्यक्त बाप दादा हिस्ट्री हॉल में आना शुरू किया। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा ग्रुप आ गया, अब ठहराने की जो थोड़ी वो जगह थी सब भर दिया, तो बाबा कहाँ आएंगे। तब ये पांडव भवन के आंगन में स्टेज बनाई थी, दो बार भोजन मिलता था, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना इकट्ठा 10 और 11 के बीच में, शाम को 5 से 6 के बीच में रात का भोजन, चाय, सब कुछ उसी समय, और आंगन में ही बाबा के पधरा मनी हुई थी। तो फिर उसके बाद विचार किया गया, बाबा कहते हैं ना कि बाप के बच्चे बढ़ते जाएंगे, स्थान भी कम हो जाएगा, फिर विचार किया गया अभी कौन सा स्थान बनाया जाए, और तो कोई स्थान था ही नहीं ओम शांति भवन। फिर ये पहाड़ी को समतल करके इसमें हॉल बनाया गया। अब ये पहाड़ी आपको डबल अनुभव कराएगी, क्योंकि ये पहाड़ी पर एक तो प्यारी माँ के याद के अंगूरों की बेल, दूसरा बाबा खुद इस पहाड़ी पर बैठ के तपस्या करते थे। बाबा का आपने एक फोटो देखा होगा ना, ऐसे हाथ रखा हुआ पहाड़ी पर, वो इस पहाड़ी पर है, और बाबा इधर बैठते थे फिर उधर बैठ जाते थे, फिर उधर से कभी कभी बच्चे नीचे खड़े हैं तो बाबा सबको बोलते थे आओ बच्चे ऊपर आ जाओ, तो गीत बजता था धरती को आकाश पुकारे हैं, तो सारे दौड़ दौड़ करके आ जाते थे बाबा के पास। फिर आते थे, बाबा उनको कहते थे सेमिनार करो, सेमिनार मीन्स तपस्या करो, सेमिनार ज्ञान का नहीं, यहाँ तो कहेंगे सेमिनार करो, तुम भी बोलो मैं भी बोलो, बोलते रहेंगे, पता नहीं कितने पॉइंट्स निकाल के रख देंगे, ढेर पॉइंट्स निकाल देंगे। तो बाबा योग कराते थे। फिर बाबा के जब 1975 में ये हॉल बनके तैयार हुआ है, 75 से अव्यक्त बाप दादा इसी हॉल में आते थे 1982 तक, 83 में ओम शांति भवन में आना शुरू हुआ, तो अव्यक्त बाबा यहाँ बैठते थे और हम कहाँ बैठते थे, बाबा के पास यहाँ। तो देखो कितना बड़ा भाग्य, कोई यहाँ पर नहीं था, सोफा नहीं था, कुछ नहीं था, हम सब के सब पट में बैठते थे, और भाग्य इतना अच्छा, मुंह में कुछ संकल्प तो नहीं आ रहा कि हमको नहीं मिला है, पहुंच जाओ ना, अभी बैठ जाओ ना, बाबा यहाँ बैठे हैं, दादियाँ यहाँ, और हम सब छोटे छोटे बच्चे कहेंगे ना, तो आस पास बैठते, आशा बहन को भी अनुभव होगा, तो हम सब यहाँ बैठते थे और कोई कुछ नहीं था, केवल एक कुर्सी रखी थी दीदी मनमोहिनी के लिए, बाकी किसके लिए नहीं रखी हुई थी। फिर ये हॉल भी छोटा होने लगा, फिर 82 के बाद 83 में ओम शांति भवन बन के तैयार हुआ, 83 से अव्यक्त बाप दादा वहाँ पर आना शुरू किया। अब आपको इस हॉल में डबल फायदा मिलेगा, क्या, अव्यक्त बाप दादा का वरदानी हॉल और साकार बाबा का तपस्वी भूमि का विशेष अनुभव रहेगा। तो बाबा अपने बच्चों को हर तरह से भरपूर करते हैं और भी भरपूर करेंगे, तो ये बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात, साकार बाबा के जो हर समय बाबा इस पांडव भवन के अंदर जब चक्कर लगाते थे तो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, और बच्चे जहाँ खड़े होते थे, जहाँ बाबा, वहाँ बच्चे सारे तैयार हो जाते थे और बाबा के पास आते थे। और बाबा बच्चों के इतने रमणीक थे, बाबा ऐसा नहीं है ज्ञान के ऐसे बैठ जाओ सूखे बन जाओ, सूखा भी नहीं, हंसो खेलो खाओ पियो मौज करो, और लेकिन ब्राह्मण जीवन की मर्यादा का पूरा पालन करना। बाबा कहते थे अगर ब्राह्मण जीवन की मर्यादा का पालन नहीं करते तो संगम युग में ब्राह्मण बनने का फायदा क्या, कलप के बाद बाबा आया है और कलप के बाद बच्चे मिल रहे हैं, तो बच्चों को क्या करना है। कभी कभी माता है ना तंग होती है ना शरीर से, कहती बाबा जल्दी चले ना, तो बाबा क्या कहते, तुम क्या चाहते मैं चला जाऊं क्या, अरे संगम युग के अंदर कैसा भी शरीर है इसी पुराने शरीर से तो सब कुछ लेना, जितना मौज मनाना है बाबा के साथ मनाओ, जितना प्राप्ति करनी है बाबा के साथ करते रहो, जो कुछ लेना है लेते रहो, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। तो साकार में बाबा क्या करते थे, बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बच्चों को हंसाते भी थे, बहुत करते थे। बाबा कहते थे ये जीवन है ब्राह्मण जीवन है मौजों का जीवन, संगम युग है मौजों का युग, जितनी मौजें करनी है जितना खुशी प्राप्त करनी। कल भी बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देखते कहते इनको क्या मिले, खुश रहते, दुख में भी खुश रहते। क्यों खुश रहते हैं, क्योंकि बाबा मिला है मौजे ही मौजे हैं, ब्राह्मणों को और क्या चाहिए, हर चीज में कुछ न कुछ प्राप्ति है, अकल्याण में भी कल्याण है, कल्याण में भी कल्याण है, दुख में भी खुशी है, खुशी में भी खुशी है। तो एक बार बाबा क्या, जहाँ बाबा होते थे सबको लगता था हम बाबा के पास जाए, तो बाबा एक बार आंगन में चल रहे थे, ढेर बच्चे आ गए, हर एक सोचे मैं बाबा का हाथ पकड़ू। अब कितने बच्चे हाथ पकड़ेंगे, दो ही तो पकड़ेंगे ना, ज्यादा तो नहीं पकड़ सकते थे। बाबा इतना प्यार किया, बाबा ने कहा आओ सब बच्चे आ जाओ सब हाथ पकड़ो। अब सब हाथ कैसे पकड़ेंगे, पांच ने पांच उंगली पकड़ ली है, पांच ने इधर पांच उंगली पकड़ ली, दस ने इधर बाजू पे हाथ रख लिया, पांच ने इधर बाजू पे रख लिया, दस ने इधर पीछे कंधे पे हाथ रख लिया। बाबा ने कहा देखो बछड़े वाल दुनिया में देखना हो तो मेरे जैसा देख, फिर बाबा ने कहा देखो विराट रूप देखना हो तो यहाँ देखो, है ना। बाबा ये नहीं कहते क्यों आए, जैसे किसी केक काटने बैठते ना, अब आगे तो चार पांच होते बाकी पीछे वाले क्या करते हैं, जो उनके आगे उसके कंधे पे हाथ रख देते, वो सोचते हमने भी केक काट लिया, ऐसे करते हैं ना, तो उनका जैसे कॉपरेशन हो गया, उनका पार्टिसिपेशन हो गया। तो बाबा कहते हैं ये तो बाबा बच्चों से रमणीक खेल करते थे। तो बाबा कहते बाबा या शब्द कहा, बाबा को याद किया, तो ये एक हमारे क्या चीज है, हमारे भाग्य की निशानी है। तो इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहते हैं, अपने भाग्य के गुण गाते रहो, अपने भाग्य के बारे में खुशी में नाचते रहो। बाबा कहते हैं अपने भाग्य को इतना अच्छा बनाओ, इतना ऊंच बने, तो उसके लिए भी बाबा ने हमको एक युक्ति बताई हुई है, अपने आप को चेक करने के लिए। और वो चेक करने कैसे करना है, बाबा ने कहा ना, जैसे मुरली में कहते हैं नारद को कहा अपना मुंह तो जाके दर्पण में देखो, तो बाबा कहते हैं बच्चों को भी दर्पण दिया है। कौन सा दर्पण है माताएं बताओ, हैं कौन सा दर्पण है, हैं हैं है दर्पण, अब मैं बताऊंगी, है ना, ठीक है। पहला दर्पण जो माताएं अपने पर्स में रखती, छोटा सा होता है ना, हर एक रखेगा। और भाई क्या करते, स्कूटर पे को शीशा होता है ना, ये गाड़ी का कांच होता है उसको देखते हैं, मोबाइल के दर्पण में देखते रहते हैं ना। तो पहला दर्पण है अपनी स्वस्थिति का। बाबा कहते हैं अपनी स्वस्थिति को संपन्न बनना है, तो जो संपन्न बनेगा वो अपनी स्थिति पर भी पूरा ही ध्यान देता है। तो इसलिए स्वस्थिति क्या है, कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, बाबा ने चुना है, बाबा ने अपना बनाया है, करोड़ों में से कोई हूँ, कोई में से कोई हूँ। बाबा कहते ये भी सारे मेरे VVIP बच्चे, दुनिया देखती कहते पता नहीं कैसी माताएं हैं चल नहीं पाती, और बाबा कहते मेरी लाडली है, मेरी VIP है, और ये तो विश्व की महारानी बनने वाली है। बाबा ये कह रहे, दुनिया कहती ये क्या है। तो क्या हूँ, अपनी स्थिति को देखना है, अपने भाग्य को देखना है, बीच बीच में समय निकाल करके अपनी स्थिति को इतना शक्तिशाली बनाए कि कभी भी ये संकल्प ना आए क्यों क्या कैसे, क्यों क्या कैसे का क्वेश्चन मार्क देखा है ना, वो एक टेढ़ा सा होता है, ऐसे गोल सा होता है, उसके अंदर कुछ भी लग गया, धागा लग गया, कोई साड़ी का पल्ला चिपक गया, वो ऐसा चिपक जाता है, वो तो निकलता ही नहीं है, फंस जाता है। क्यों क्या के क्वेश्चन में फंस गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते क्यों क्या के क्वेश्चन को भट्ठी में समाप्त करना। और दूसरा दर्पण कौन सा होता है, घर में एक होता है ना हाफ साइज होता है, हाफ साइज का दर्पण सबके पास घरों में होता है। तो बाबा कहते वो है अपने कमल आसन की स्थिति पर बैठना। घर में रहो, कर्म करना है, कुछ छोड़ना नहीं है, कपड़ों का त्याग नहीं करना। कल भी बाबा ने कहा छोड़ा क्या, अरे जेवर पहनते हो, सब कुछ पहनते हो। कई बार आते थे भाई, आते थे बहनें, आती थी माताएं बाबा को कहते बाबा हम ये जेवर नहीं पहनेंगे। बाबा कहते क्यों नहीं पहनेंगे, तुम जाओ शादी में जाओ, अच्छी तरह से पहनो, सज धज के जाओ, लेकिन अंदर से स्थिति डिटैच रहे। तो ऐसे बाबा ने हमारे जीवन को इतना न्यारा और प्यारा बनाया है, और कोई तो बना ही नहीं सकता है। फिर तीसरा दर्पण है जो फुल साइज का होता है, फुल साइज का देखा ना, इसलिए बाबा कहते हैं हमें हर प्रकार से अपनी ज्ञान, चारों पढ़ाई के सभी सब्जेक्ट और अपने तन मन धन, जिसको बाबा कहते हैं ना, हमने कहा ना बाबा ये सब कुछ तेरा है, फिर बाबा भी हंसते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे इतने अच्छे हैं, कहिए बाबा सब कुछ दे रहा है लेकिन आपका मेरा मेरे को हाथ नहीं लगा, ऐसा नहीं करने का। फुल दर्पण मीन्स बाबा मैं आपका हूँ, मैं आपके साथी हूँ, आपके हर कार्य में सहयोगी हूँ, मुझे संपन्न बन करके विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग देना। और चौथा दर्पण कौन सा होता है, चौथा दर्पण कार्टून वाला, देखा है कभी ऐसा दर्पण होता है, छोटा पतला दिखाई देगा, मोटा लंबा दिखाई देगा, और कोई टेढ़ा दिखाई देगा, उसको जैसे ही देखते तो हंसना शुरू कर देते। तो बाबा कहते माया भी ऐसा कार्टून का दर्पण बच्चों के सामने लाती है, और बच्चे क्या करते, कार्टून बन जाते हैं। कभी देखो तो बहुत अच्छी स्टेज में, कभी देखो तो नाच रहे हैं, कभी देखेंगे ये क्या है, हम तो बाबा के बन गए, अभी क्या करना है। कभी ज्ञान के पॉइंट को ध्यान से सुनते हैं, फिर कभी नहीं सुनते, फिर माया आ जाती है, फिर बुलाते हैं बाबा ये क्या हो रहा है, बाबा हमें बचाओ। तो बाबा कहते कार्टून का दर्पण अपने पास कभी नहीं रखना है, होता है ना देखने जाते हैं तो कार्टून का दर्पण सबके पास रहता है, कभी कैसे कभी कैसे, तो उस दर्पण को छोड़ करके अपनी स्व स्थिति में विशेष रहने का है। फिर तो बाबा हम बच्चों को हर स्थान पर इतनी तपस्या की बाबा ने, कि बाबा का मधुबन जो है कितना तपस्वी है मैं आपको क्या बताऊं। हम तो यहाँ रहते हैं, बाहर वाले आते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं, लेकिन बाहर वाले भी कई आते हैं, उनको आते ही वो ऐसे वाइब्रेशन टच करते हैं, शांति स्तंभ पर जाके बैठते कहते पता नहीं कौन सी शक्ति की वेव आई थी जो हमारे को टच किया। तो इसके लिए मैं आपको एक दो कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक भाई किसी बहन से मिलने आया था, तो पांडव भवन के आंगन में थल्ले पर बैठा था। तो मैंने उसको पूछा किस लिए आए, बोला बहन से मिलना, किसी का नाम लिया। तो मैंने कहा रिसेप्शन में बैठो, कहता नहीं मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा। मैंने कहा क्यों, कहता यहाँ पता नहीं कितनी शक्ति, और ऐसे लग रहा है कि कोई लहरें आ रही है जो मेरे को टच कर रही है, मेरे को बहुत अच्छे अनुभव करे, मैं तो बहन से भी जल्दी नहीं मिलूंगा, मेरे को यहाँ बैठने दो। अरे जिसे ज्ञान भी मालूम नहीं, ब्रह्मा कुमारी का मालूम नहीं है, ये स्थान क्या वो भी मालूम नहीं है, तो आपको इतना बड़ा भाग्य मिल रहा है। शांति स्तंभ पर बैठोगे, बाबा के कमरे में बैठोगे, हिस्ट्री हॉल में बैठोगे। तो शांति स्तंभ पर जब बैठते ना, एक आदत पड़ी हुई है, हर एक को आदत है, एक बार मुरली सुनेंगे, दो बार सुनेंगे। अभी तो इतनी मुरलियां सुनते हैं, इतनी मुरलियां मोबाइल खोल करके बैठे रहते हैं। शांति स्तंभ पर जाते ना, वहां मोबाइल खोल के बैठ जाएंगे, मुरली पढ़ने बैठ जाएंगे। ये भूल कभी नहीं करना। अगर आप वहां मोबाइल बैठ के खोल के पढ़ेंगे, बाबा से जो प्राप्ति हो रही है वो प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। शांति स्तंभ पर जाओ तो बड़ा शांति से बैठो, आराम से बैठो, बाबा की तरह शक्तिशाली बनो। हिस्ट्री हॉल में जाओ, बाबा की गोद में बैठ जाओ। वहां पर मोबाइल को बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना। एक बार एक महात्मा जी आए, आकर के जैसे गाड़ी आंगन में उतरी वहां खड़े हो गए। तो महात्मा जी को कहा कि चलो महात्मा जी आगे चलो, हम आपको दिखाते। कहता नहीं नहीं नहीं, मेरे को यहाँ रहने दो, खड़े रहने दो। खड़ा रहा 5 मिनट। तो बाद में अनुभव सुनाता है कि यहाँ ऐसा शक्ति का स्रोत, बाबा ने ऐसा स्थान बनाया है, कमाल है बाबा की। बाबा इतना अच्छा काम किया, इतनी पावर है, ऐसी पावर तो कहाँ मिलेगी। जबकि उसको पता नहीं है, वो तो स्पिरिचुअल लोग हैं। तो अभी बाबा के बच्चे कितने अच्छे हैं, ना चाहते हुए बाबा भरपूर कर रहे हैं। आप लेना चाहो या ना लेना चाहो, बाबा आपकी झोली भर देंगे, पॉकेट भरी हुई होगी और सब कुछ भरा हुआ होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, भट्टी में आए हैं तो बाबा के प्यार का अनुभव करना है, बाबा के साथ का अनुभव करना है और बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें भी करनी है। फिर से आपका स्वागत है, और स्वागत के साथ साथ मौसम भी बड़ा अच्छा है। कभी अमृत वेला योग करते हैं ना, उसके बाद बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा होती है। तो कभी सोचेंगे अच्छा चलो हम नक्की लेक तक चक्कर लगा के आ जाएं। लेकिन एक और बात बता दूं, नक्की लेक के पास जाएंगे ना तो हम बाबा ने माउंट आबू क्या है, ये वैसे ही फॉरेस्ट एरिया है। ये किसका राज्य है यहाँ पर, यहाँ इस फॉरेस्ट एरिया में राज्य है। जंगल है तो किसका होता है, शेर चीते का राज्य होता है, सभी जानवरों का घर है। बाबा ने क्या किया, जंगल को मंगल बनाया है। और सुबह अमृत वेले योग के बाद कई सोचे अकेले ही हम जाकर के तपस्या करने निकल जाए, तो बता जंगल में अभी गर्मी होती है तो जंगल के जो जीव जंतु हैं बड़े बड़े, ये वो पानी पीने के लिए बाहर आते हैं, नक्की लेक के पास आते हैं। और योगियों को देख करके कितना खुश हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली के आए हैं इतने अच्छे योगी, इनसे बढ़ के और क्या चाहिए है। तो इसलिए आपको ध्यान पर रहे, आएगा नहीं ना, आएगा ना, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अकेले नहीं जाना, अगर आप जाते हैं तो 4 लोग जाओ, 5 लोग जाओ, अकेले मत जाना। अकेले मस्ती में चलेंगे, योग में चढ़े हुए पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कभी जाना है इधर तो पहुंच जाते हैं, क्योंकि 2 रास्ते हैं ना नक्की लेके, एक रास्ता इधर एक है उधर। जाओ जरूर, क्लास के बाद जाना है, ग्रुप के साथ जाओ, वैसे आपका प्रोग्राम भी बनाया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अकेले नहीं कहीं जाने का, भी सुबह अंधेरे में, बाकी तो दिन में तो रोशनी है, कोई समस्या नहीं। और आपको आके देखेगा भी तो उसको तो योग के वाइब्रेशन मिल जाएंगे, क्योंकि सतयुग में उसको भी तो आना ही है ना वो होगा नहीं हमारे सामने, नहीं होगा बल्कि बहुत दूर होगा ना, कहाँ कहाँ दूर होंगे, वह हमारे सामने थोड़ी होंगे। शेर तो होगा, लेकिन यहाँ शेर नहीं है, आपके ध्यान पर रहे, शेर भी नहीं है, कोई ऐसे जान है नहीं। लेकिन जानकारी के लिए बता रहे हैं, है कोई नहीं, ना भालू आता है ना कुछ आता, मैं आपको पहले बता दूं, कोई नहीं आता है। लेकिन जानकारी रहे कि हम कहाँ रहते हैं और किस स्थान पर रहते हैं, वो जानकारी। और बाबा कहते तन और मन का भी ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए स्वस्थ भी रहो और मन से खुश भी रहो। तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप सबको मुख मीठा कराया जाएगा, टोली देंगे। तो बाबा के पास जब बच्चे आते थे ना, तो बाबा मिलते थे तो बाबा बच्चों को टोली देते थे। कभी मुझे याद है, कभी कभी हम लोग आंगन में खड़े होते थे, पार्टी आ गई है, बाबा रिसीव करते थे, फिर तैयार होके आते थे, कहते बाबा से मिलने जाना। अरे अभी तो बाबा से मिले हो, कहते टोली कहाँ खाई हमने है? टोली क्या है? टोली हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और देखो सेंटर पर तो रोज क्लास के बाद टोली कहाँ मिलती है? यहाँ रोज आपको क्लास के बाद टोली मिलेगी। और बाबा कहते थे, फिर कभी कभी दादी भी खड़ी होती थी, पार्टी रिसीव करते थे, कहते दादी से मिलने जाना है क्योंकि टोली नहीं खाई है, यहाँ रोज आपको टोली मिलेगी। आपको पता है बाबा क्या कहते थे? मेरे कौन से बच्चे टोलपुट हो है? टोलपुट है ना, तो अच्छा है। तो आज आपको बाबा के घर से मुख मीठा कराया जाएगा। तो पहले हम अभी एक मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।